नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बसपा लोकसभा का चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी। इस दौरान बसपा चीफ ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पार्टी कार्यक्रमों को लेकर कैडर के नेताओं के साथ गहन समीक्षा भी की, साथ ही कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना भी साधा। मायावती ने कहा कि देश और यूपी सहित विभिन्न राज्य सरकारों को संकीर्ण जातिवादी और जनविरोधी नीतियों और कार्यप्रणाली को लेकर राजनीति हालात तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं होकर के लोग बहुकोणीय संघर्ष का रास्ता चुनने को आतुर हैं। ऐसे में लोकसभा का अगला आम चुनाव दिलचस्प, संघर्षपूर्ण और व्यापक जनहित देश हित में साबित होने की प्रबल संभावना है, जिसमें बसपा की अहम भूमिका होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि 2014 से पहले देश में चेहरा देखकर योजनाएं बनाई जाती थी। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद भारत के प्रति दुनिया की धारणा बदल गई है। मुख्यमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के आगमन पर राजधानी के निशांतगंज स्थित वाल्मीकि नगर में आयोजित कार्यक्रम में ये दावा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया। आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा, वर्ष 2014 से पहले देश में चेहरा देखकर योजनाएं बनाई जाती थी, उसमें भी जमकर बंदर बाट का खेल होता था। उनके एजेंडे में गरीब, सामान्य नागरिक, महिलाएं और नौजवान शामिल नहीं होते थे। आज देश में गरीबों और ज़रूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, गरीबों के घर में निःशुल्क शौचालय, जनधन खाता योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम सम्मान निधि और पीएम स्वनिधि जैसी तमाम लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। ये योजनाएं पहले क्यों नहीं चलाई गई, जबकि देश भी वही है और सरकार के आय के स्रोत भी वही हैं। तेलंगाना में आज विधानसभा की सभी 119 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर 3 बजे तक राज्य में 51.89% वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग आज सुबह 7 बजे से शुरू हुई। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को शुरू होगी। राज्य में कांग्रेस, भाजपा और वर्तमान में सत्तारूढ़ बीआरएस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीआरएस नेता और मुख्यमंत्री केसीआर इस बार 2 सीटों गजवेल और कामारेड्डी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मौजूदा समय में केसीआर गजवेल सीट से विधायक हैं। 119 सीटों वाली विधानसभा के लिए 3.26 करोड़ से अधिक मतदाता 2290 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव आयोग ने 35,655 मतदान केंद्रों पर 1.85 लाख से अधिक मतदान कर्मी तैनात किए हैं, जबकि 22,000 माइक्रो पर्यवेक्षक पूरी मतदान प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बृहस्पतिवार को आरोग्य कवच 108 कार्यक्रम के तहत 262 नई आधुनिक जीवन रक्षक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई, जिसके तहत आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के वाहनों के जरूरतमंद लोग इन वाहनों को मुफ्त में बुक कर सकेंगे। आरोग्य कवच 108 एम्बुलेंस कार्यक्रम कर्नाटक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा चलाया जाता है। इस अवसर पर यहां विधान सौध के भव्य मंच पर आयोजित कार्यक्रम में सिद्धरमैया ने कहा कि ये सुनिश्चित करना सरकार का लक्ष्य है कि सभी सरकारी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से पुराने और मैले कुचैले कपड़े पहनकर आने वाले गरीब लोगों का मानवता के साथ इलाज करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, उन्हें बिना किसी भेदभाव के अच्छी स्वास्थ्य देखभाल मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य सेवा को 108 आपातकालीन एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है, ताकि इलाज के बिना किसी की जान ना जाए। झारखंड में पेपर लीक के मामलों को लेकर सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। विधानसभा के पास हुए कानून को अब राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी मंजूरी दे दी है। इसके बाद सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होते ही कानून बन जाएगा। पेपर लीक को रोकने को लेकर सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं। नए कानून के मुताबिक किसी व्यक्ति के पकड़े जाने पर 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में सभी पार्टियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए नए मौकों पर सख्ती बरती। अधिकारियों ने इस दौरान मुफ्त में बांटी जाने वाली बहुत सी चीज़ें, ड्रग, नकदी और शराब जब्त की, जिनकी कीमत 1766 करोड़ से अधिक है, तथा इनका इस्तेमाल मतदाताओं को लुभाने के लिए किया जाना था। स्थानीय चुनाव मशीनरी की शिकायतों और सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने कई प्रमुख नेताओं को कारण बताओ नोटिस और सलाह जारी की कि वो आचार संहिता के प्रावधानों का पालन करें। तेलंगाना के वित्त मंत्री हरीश राव द्वारा रायथू बंधु योजना के तहत किस्त जारी करने के बारे में घोषणा किए जाने को आचार संहिता का उल्लंघन माना गया। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।